नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं अरुण कुमार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार की प्राथमिकता पश्चिम एशिया के संघर्षरत क्षेत्रों में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा। पश्चिम एशिया में संकट और बढ़ा, ईरान के जवाबी हमले में सऊदी अरब में अमरीकी सैन्य विमान हुआ क्षतिग्रस्त। अफगानिस्तान में बाढ़ और भूस्खलन से 17 लोगों की मौत, 26 घायल। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 221 रन का लक्ष्य दिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के बीच केंद्र सरकार ने संघर्ष क्षेत्रों में फंसे भारतीयों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। श्री मोदी ने आज केरलम के पालक्काड़ में एक चुनावी जनसभा में पश्चिम एशिया संघर्ष पर सरकार के दृष्टिकोण का उल्लेख किया।
युद्ध शुरू होने के बाद से ही मैं इन देशों के सभी राष्ट्राध्यक्षों से लगातार बात कर रहा हूं, संपर्क में हूं। सारे ही देश युद्ध क्षेत्रों में फंसे भारतीयों की सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहे हैं। वहां पर हमारे भाई बहनों को कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए भारतीय दूतावास भी दिन रात काम कर रहा है। भारतीयों के हितों की सुरक्षा भाजपा एनडीए सरकार के लिए सर्वोपरि है।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया की स्थिति ने ऊर्जा की जरूरतों के लिए चुनौती उत्पन्न कर दी है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने कहा कि ये मुश्किल समय है।
प्रधानमंत्री ने तौर पर यह चुनौतीपूर्ण समय है। सभी देशवासियों से फिर यह आग्रह करूंगा कि हमें एकजुट होकर इस चुनौती से बाहर निकलना है। मैं सभी देशवासियों से अपील भी करूंगा कि वो जागरूक रहे, अफवाहों के बहकावे में न आए। सरकार की तरफ से जो आपको निरंतर जानकारी दी जा रही है उस पर भरोसा करें।
सऊदी अरब में ईरान के जवाबी हमले के बाद अमरीकी सैन्य विमान को हुए नुकसान की खबरों के बीच पश्चिम एशिया में सुरक्षा स्थिति और बिगड़ गई है। एक रिपोर्ट।
अमेरिका की मीडिया के अनुसार हमले में प्रिंस सुल्तान एयरबेस को निशाना बनाया गया। हमले में निगरानी और युद्ध प्रबंधन के लिए इस्तेमाल होने वाला अमरीकी विमान क्षतिग्रस्त हो गया। इसमें 12 अमरीकी सैनिकों के घायल होने की खबर है। ईरान ने दावा किया कि उसने एक अमरीकी MQ-9 ड्रोन को मार गिराया और एक F-16 लड़ाकू विमान को निशाना बनाया। वहीं इसराइल ने ईरान के अन्य हिस्सों पर फिर हवाई हमले किए। इसराइल की सेना ने कहा कि वो कई मोर्चों पर युद्ध के लिए तैयार है। इस बीच अमरीका ने USS ट्रिपोली पर अतिरिक्त मरीन सैनिक तैनात किए हैं। ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगैर गालिबफ ने चेतावनी दी है कि ईरानी सेना किसी भी अमरीकी जमीनी उपस्थिति का जवाब देने के लिए तैयार है। विनोद की रिपोर्ट के साथ विश्व दर्पण के लिए सरफिरोजी।
इस बीच यमन के हौसियों ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच इसराइल को निशाना बनाते हुए दूसरे सैन्य अभियान की घोषणा की है। इस अभियान के तहत दक्षिणी कब्जे वाले फलिस्तीन में स्थित महत्वपूर्ण और सैन्य ठिकानों पर क्रूज मिसाइलों और ड्रोन से हमला करने का दावा किया गया। हौसियों के सैन्य प्रवक्ता यहया सरी ने कहा कि यह अभियान पवित्र जिहाद युद्ध के अंतर्गत शुरू किया गया था और यह ईरान तथा लिबनान के हिजबुल्ला जैसे सहयोगी समूहों की सैन्य कार्रवाइयों के साथ समन्वय में किया गया। पश्चिम एशिया संघर्ष और शांति वार्ता के प्रयासों पर चर्चा के लिए पाकिस्तान आज सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कर रहा है। मिस्र के विदेश मंत्री बदर अब्देल लत्ती और तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक दार के निमंत्रण पर कल रात इस्लामाबाद पहुंचे। सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैजल बिन फरहान अल सऊद भी आज पाकिस्तान पहुंचे। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने बताया कि ये विदेश मंत्री प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। अरब देशों के विदेश मंत्रियों ने सर्वसम्मति से मिस्र के राजनयिक नबील फहमी को अरब लीग के अगले महासचिव के रूप में नामित करने पर सहमति व्यक्त की है। वे अहमद अबुल घीत का स्थान लेंगे, जिनका दूसरा कार्यकाल इस वर्ष जून में समाप्त हो रहा है। रूस के उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने ऊर्जा मंत्रालय को 1 अप्रैल से पेट्रोल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है, लेकिन इस दौरान कच्चे तेल का निर्यात अप्रभावित रहेगा। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी तास ने बताया था कि ये प्रतिबंध 31 जुलाई तक लागू रहेगा। अमेरिका और यूरोप में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुए, जहां लाखों लोग देश भर के शहरों में नो किंग्स के नारे के साथ एकत्रित हुए। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आव्रजन और विदेश नीति का विरोध किया। आयोजक ने कहा कि ये प्रदर्शन एक समन्वित राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा थे, जिसके तहत देश भर में 3,000 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अफगानिस्तान में बाढ़, भूस्खलन और आंधी तूफान के कारण पिछले 24 घंटों में 17 लोगों की मौत हो गई और 26 अन्य घायल हो गए। अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में से कुल 13 प्रांत इस आपदा से प्रभावित हुए हैं। अधिकारियों ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी है, जिससे मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। एक प्रवक्ता ने बताया कि इस आपदा ने बुनियादी ढांचे और कृषि को भी व्यापक नुकसान पहुंचाया है। लगभग 147 घर पूरी तरह या आंशिक रूप से नष्ट हो गए और लगभग 80 किलोमीटर सड़कें बह गईं। बांग्लादेश में खसरे का प्रकोप फैल गया है। मार्च में कई जिलों में बढ़ते संक्रमण के बीच 21 बच्चों की मौत की खबर है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि ये प्रकोप ढाका, मयमनसिंह, राजशाही, चट्टोग्राम, जशोर, पबना और नाटोर सहित कई क्षेत्रों को प्रभावित कर रहा है और कई अन्य क्षेत्रों से भी अतिरिक्त मामले सामने आए हैं। नेपाल में आज काठमांडू के बनेश्वर में पुलिस और कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल CPN UML के समर्थकों के बीच झड़प हुई। इस झड़प में एक प्रदर्शनकारी घायल हो गया। CPN समर्थक पार्टी अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे और उनकी तत्काल रिहाई की मांग कर रहे थे। एक रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने शुक्रवार को शपथ लेने के बाद पहली बार कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में जेनजी विरोध प्रदर्शनों की जांच कर रहे न्यायिक आयोग की सिफारिशों को लागू करने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय के बाद पुलिस ने कल सुबह KP शर्मा ओली को उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया। पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक को भी उनके आवास से हिरासत में लिया गया। पुलिस ने तत्काल वारंट जारी करने के बाद दोनों नेताओं को गिरफ्तार किया। काठमांडू से श्वेता सिंह की रिपोर्ट के साथ विश्व दर्पण के लिए आनंद पाठक।
यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की दोहा यात्रा के दौरान यूक्रेन और कतर ने रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों ने क्षेत्रीय तनाव और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर भी चर्चा की। एक रिपोर्ट।
व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कल लुसेल पैलेस में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात की, जहां दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की समीक्षा की, जिसमें क्षेत्र में बढ़ते तनाव और यूक्रेन में जारी संघर्ष शामिल है। कतर के रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस समझौते में मिसाइल खतरों और मानव रहित हवाई प्रणालियों से निपटने में सहयोग के साथ साथ दोनों देशों के बीच विशेषज्ञता के आदान प्रदान को भी शामिल किया गया है। बैठक के दौरान ज़ेलेंस्की ने कतर के साथ यूक्रेन की एकजुटता व्यक्त की और क्षेत्रीय देशों को निशाना बनाने वाले हमलों की निंदा की। क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच यूक्रेन ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ रक्षा क्षेत्र में सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
मंगोलिया में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कल भारतीय मुक्केबाज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। महिला वर्ग में लवलीना बोरगोहेन, निखत जरीन, मीनाक्षी हुडा और जैस्मीन लेम्बोरिया चुनौती पेश करेंगी। पुरुष वर्ग में जादूमणि सिंह, सचिन सिवाच और नरेंद्र बेरवाल मुकाबला खेलेंगे। प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने वाले खिलाड़ी राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई खेलों के लिए सीधे क्वालिफाई कर सकेंगे। IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 221 रन का लक्ष्य दिया है। कोलकाता ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 220 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई इंडियंस ने ताजा समाचार मिलने तक 10वें ओवर में बिना किसी नुकसान के 112 रन बना लिए हैं। इससे पहले कल खेले गए मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने सनराइजर्स हैदराबाद को 6 विकेट से हराया था। और अब अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार की प्राथमिकता पश्चिम एशिया के संघर्षरत क्षेत्रों में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा। पश्चिम एशिया में संकट और बढ़ा, ईरान के जवाबी हमले में सऊदी अरब में अमरीकी सैन्य विमान क्षतिग्रस्त हुआ। अफगानिस्तान में बाढ़ और भूस्खलन से 17 लोगों की मौत, 26 घायल। और IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 221 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।